हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दूसरी तरफ आदित्य सो कर उठा। कल की तबीयत खराब होने के कारण उसे अभी भी काफी कमजोरी लग रही थी। फिर भी वो उठ गया और अपने आसपास सुनैना को ढूंढने लगा। उसे जहां तक याद था, कल रात सुनैना उसके साथ ही सोई थी, लेकिन उसे सुनैना नहीं मिली। उसे लगा कि वो जरूर कमरे से बाहर नीचे नाश्ता करने चली गई होगी, या फिर शायद कॉलेज। इतना सोचकर वो सीधा वॉशरूम में चला गया, फिर फ्रेश होकर शावर लिया और नहाकर ऑफिस जाने वाले कपड़े पहनकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कल रात की सारी बातें आदित्य को अच्छी तरह याद थीं, क्योंकि कल रात वो शराब के नशे में बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत दवाओं का असर था, लेकिन उसकी वजह से उसने कुछ भी नहीं बोला। कई सारी बातें अभी भी उसके जहन में साफ चल रही थीं, और वो सब कुछ सच था जो सुनैना को भवानी काका ने बताया था। आदित्य के दिमाग में वो सारी बुरी और गलत चीजें काफी बुरी तरह भरी हुई थीं। इसी वजह से वो किसी को भी खुद के करीब आने नहीं देता था, और खुद भी हमेशा सबसे कटा-कटा सा ही रहता था। वो नहीं चाहता था कि सुनैना उसके इतना करीब आए कि उसके साथ कुछ भी बुरा हो। पहले ही सुनैना का एक्सीडेंट हो चुका था, और कहीं न कहीं आदित्य को लगता था कि ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि आदित्य सुनैना की जिंदगी में है, इसीलिए वो उससे दूर रह रहा था। लेकिन उसके एक्सीडेंट होने के बाद वो उससे दूर नहीं रह पाया। लेकिन आज से उसने फिर से ये चीज अपने मन में तय कर ली थी कि वो सुनैना से भले ही प्यार करता है, और ये बात सुनैना को बता भी चुका है, लेकिन वो इतना स्वार्थी नहीं है कि अपने फायदे के लिए सुनैना के साथ कुछ भी बुरा या गलत होने दे। इसीलिए उसने फिर से सुनैना से दूरी बनाने में उसकी भलाई समझी। आदित्य पूरा तैयार होकर नीचे आया। स्वीटी जल्दी से आकर किचन में सुनैना और गीता को बताया कि आदित्य तैयार होकर नीचे आ गया है। तब तक सुनैना के दो आलू के पराठे पूरी तरह तैयार हो गए। वो काफी खुश होकर प्लेट में नाश्ता सर्व करके आदित्य के लिए ले गई, और डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट की प्लेट रखते हुए जल्दी से आदित्य की तरफ बढ़ी। लेकिन आदित्य तब तक तेज कदमों से सीधा घर से बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। सुनैना उसे रोकने के लिए आवाज लगाती है, आदित्य रुको ना। सुनैना की आवाज सुनकर आदित्य ना चाहते हुए भी रुक गया। पीछे मुड़कर सुनैना की तरफ देखते हुए उसी बेरुखी भरे अंदाज में बोला, क्या है, पहले ही लेट हो गया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्यों इस तरह से टोक रही हो पीछे से। आदित्य के इस तरह बोलने पर सुनैना को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराने की पूरी कोशिश करते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा सा लेट ऑफिस चले जाओगे तो, और वैसे भी ब्रेकफास्ट कर लो, ऐसे बिना कुछ खाए नहीं निकलना चाहिए घर से। मुझे भूख नहीं है और आदत भी नहीं है ब्रेकफास्ट करने की, अब जाऊं मैं। सुनैना की बात सुनकर आदित्य बिना किसी दिलचस्पी के सीधे सपाट लहजे में बोला। सुनैना को काफी अजीब लगा, क्योंकि आदित्य इस वक्त उससे बिल्कुल वैसा बर्ताव कर रहा था जैसा शादी के शुरुआत में करता था। लेकिन फिर भी सुनैना अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता अपने हाथों से बनाया है, आलू के पराठे, तुम्हें पसंद है ना। सुनैना आदित्य का हाथ छोड़ती हुई उसकी तरफ देखकर काफी उम्मीद भरी आवाज से बोली, किसने कहा तुमसे मुझे आलू का पराठा पसंद है, और ये फेवरेट तो ये सब क्या होता है, मुझे नहीं खाना, और तुमने बनाया है तो तुम खुद ही खा लेना, मुझे और भी जरूरी काम है। बोलते हुए आदित्य इस बार सुनैना के कुछ भी बोलने का इंतजार किए बिना ही वहां से चला गया, अपनी कार में जाकर बैठ गया और ड्राइवर से वहां से चलने को कहा। सुनैना हैरान और निराश वहीं दरवाजे पर खड़ी आदित्य को इस तरह अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखती रही। कुछ पल को तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही आदित्य है जिसने कुछ दिनों पहले अपने प्यार का इजहार किया था, और फिर उसके साथ रहकर वो कितना बदल रहा था। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वहीं पर आज भी है जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये सब सोचकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए, और वो वापस आकर हॉल में सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ भाभी, भैया ने खाना नहीं खाया? सुनैना को इस तरह सोफे पर बैठे देख स्वीटी उससे पूछती है। हाँ, मतलब शायद थोड़ा ज्यादा जरूरी काम होगा, सुनैना स्वीटी की बात का जवाब देते हुए कहती है, और अपनी आंख में आया आंसू छुपाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगती है। आप दोनों के बीच सब ठीक नहीं है ना? स्वीटी सुनैना की आंखों में आंसू देख लेती है और उससे सवाल करते हुए पूछती है। नहीं नहीं स्वीटी, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो आओ। अच्छा तुम ही खाकर बताओ कैसे बने हैं पराठे, तुम्हारे भैया के पास तो वक्त ही नहीं है मेरे लिए, कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं काम में। स्वीटी की बात सुनकर सुनैना जबरदस्ती खुश रहने की एक्टिंग करते हुए अपने और आदित्य के रिश्ते का सच छुपाते हुए स्वीटी से बोलती है और उसका हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल चेयर तक लाती है और फिर बैठने को बोलती है। वाह भाभी, क्या पराठे बने हैं! सच में भैया इज सो अनलकी, इतनी अच्छी चीज मिस कर दी उन्होंने। आलू के पराठे खाकर सुनैना की तारीफ करते हुए स्वीटी बोलती है तो सुनैना के जहन में फिर से ये अनलकी वाली बात घूमने लगती है और वो स्वीटी की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से बिना खाए ही उठकर वापस अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद स्वीटी और गीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उन दोनों को ज्यादा कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा था सुनैना और आदित्य के बीच इस वक्त। क्योंकि सुबह तो सुनैना इतनी खुश नजर आ रही थी और अभी आदित्य उसका बनाया हुआ नाश्ता भी खाकर नहीं गया, तो सुनैना को बुरा लगना तो लाजमी था, लेकिन फिर भी वो दोनों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रही थी। इतना तो वो दोनों भी समझ रही थीं, इसीलिए उन दोनों ने भी ज्यादा जोर देकर सुनैना से कुछ नहीं पूछा था। क्रमशः